वइन कुंतुम फी रईबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर फिर भी तुम्हें शक है, फिर भी तुम्हें, पहले तो कहा गया ना शुरू में कि भाई शक ना करो, ला रईबा फी, ये कहा गया ना, फिर भी लेकिन अगर तुम्हें शक है किस में, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, इसमें जो हमने नाजिल फरमाया अपने बंदे पर, क्या नाजिल फरमाया, ये कुरान। वो कुरान के बारे में कहते थे ना कि ये कुरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही घड़ लिया है, ये तो आप फलां से सीख आए हैं, ये तो ये है। तो अगर तुम्हें शक है, अव्वल तो शक होना नहीं चाहिए, लेकिन बिलफर्ज अगर तुम्हें जरा भी कोई डाउट रहता है इसमें, तो चैलेंज है, फातू बी सूरत मिन मिस्लिही, तो ले आओ कोई सूरत इस जैसी। ये चैलेंज कुरआने पाक में मक्की सूरतों में और जगहों पर भी आया। अल्लाह ताला ने इंसानों को चैलेंज किया है, और ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं है, रहती दुनिया तक के लिए चैलेंज है। उन लोगों के लिए तो था ही, जाहिर है वो तो अव्वलीन मुखातिब थे कुरआन के, लेकिन उस इनके बाद भी जो भी दुनिया में आएगा उसके लिए ये चैलेंज मौजूद है कि ले आओ कोई चीज। पे अब देखें सूरह बनी इसराइल में चैलेंज अल्लाह ताला ने दिया कि इस कुरान की मिसल कुछ ले आओ। फिर दोबारा अल्लाह ताला ने फिर चैलेंज दिया सूरह हूद में, तुम इसकी मिसल 10 सूरतें ले आओ, सूरह हूद आयत नंबर 13 और सूरह बनी इसराइल की 88 नंबर आयत। फिर सूरह यूनुस में आयत 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल फातू बी सूरत मिस्लिही, इसकी कोई एक सूरत की मिसल ले आओ। फिर अल्लाह ताला ने एक और चैलेंज दिया सूरह तूर में 34 आयत में कि जब एक सूरत भी नहीं ला सकते तो एक बात ही ले आओ, भी हदीस मिसली ही, इस जैसी एक आयत ही बना के ले आओ। ये सारी मक्की सूरतें हैं जिनमें चैलेंज दिया गया, और यहाँ पे मदनी सूरत में चैलेंज दिया गया कि अच्छा अगर तुम समझते हो ना कि ये तो खुद ही बना के ले आए, तो तुम भी बना लो। अच्छा आपने आप कहीं सुना है कहीं सीरत में या कहीं पे भी कि फिर वो मुशरिकी ने मक्का बैठे और वो उन्होंने इस चैलेंज के लिए फिर उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, कहीं आपने सुना हो? नहीं सुना ना, क्यों नहीं उन्होंने कोशिशें की बताएं, जो इतने ज्यादा मुखालिफ थे कि दुश्मनी में वो जंगे करने को तैयार हो गए, उन्होंने मुसलमानों को कितना टॉर्चर किया, घर घर में दुश्मनियां पड़ गई, बाप बेटे के आगे तलवार लेके खड़ा हो गया, उन्होंने एक्सपेल कर दिया मुसलमानों को मक्का से, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो दो चार आयते ही बना के ले आते, चलो एक ही ले आते। जबकि आपको पता है कि ये अरब जो थे ना अपने आप को इस कदर बड़ा समझते थे, फसाहत और बलागत में, और जुबानदानी तो थे ये, इनके शोरा ऐसा ऐसा कलाम कहते थे कि जैसे आज दौर है ना साइंस का, हर तरफ साइंस का चर्चा है, टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी बस यही सारी बातें, इसी तरह पहले जमानों के अंदर हर जमाने में किसी एक चीज का बहुत बूम होता था, जैसे ईसा अलैहि सलाम के जमाने में तिब का बहुत था, मेडिसिन का, मेडिकल साइंस का बहुत वो था, इसी तरह मूसा अलैहि सलाम के जमाने में जादू का बहुत था, अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही मौजजे दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये जुबान दानी के हमारा कलाम, ये तो अरब किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, कहते थे ये क्या है, ये तो अनपढ़ है, हम है जो अरब शायरी करते हैं, हम है जुबानदान असल में लोग। उनके वक्त में जिनको अपने लिटरेचर पे पोएट्री पे इतना ज्यादा घुमंड था, अल्लाह ताला ने मोजजा क्या उतारा कुरान की सूरत में, और इस मोजजे का फरमाया कि तुम मुकाबला लेकर आओ, और फरमाया वदउ शुहदाकुम, तुम बुला लो अपने मददगारों को भी, मददगार बुला लो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिसको मर्जी मददगार बुला लो, यानी इंसानों में से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े पोएट्स हैं, बड़ी बड़ी, और जो भी यूज करना चाहते हो टूल्स यूज कर लो, और इसी तरह जिन्नों को बुला लो, और जिस मखलूक को भी बुलाना बुला लो, अल्लाह के सिवा जिसके उस भी साथ मिलाना मिला लो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम ये करके दिखाओ कि ये इस चैलेंज को पूरा करो। और कुरान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा कलाम मतलब है तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो राइमिंग हो, ऐसे कुछ होना चाहिए, नहीं, कुरान सिर्फ जुबान के तौर पे मोजा नहीं है, बल्कि जुबान का तो है ही फसाहत बलागत इसकी, वो जाहिर है समझते ही थे ना, इतना बड़ा ये जब चैलेंज दिया गया वो क्यों नहीं ला सके, इसकी फसाहत और बलागत का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था। इवन उनका जो सबसे बड़ा शायर था उसने शायरी क्विट कर दी, उसने कहा मैं इसके बाद नहीं, उस वो इतना बड़ा शायर था कि जो बड़े बड़े शायर होते थे ना उनके जो मुशायरे होते थे जो उनकी शायरी होती थी वो काबा में लटकाई जाती थी, यानी इतना शेरो शायरी का वो जमाना था, यानी हर कबीले का अपना शायर होता था। जैसे समझ ले आज मीडिया भी है ना, वो शायर वो ही काम करते थे कि जिसके बारे में उनको कोई अच्छी बात बस कहनी है, कोई अच्छी शोहरत करानी है किसी की, तो बस उसकी शायरी ऐसी कर देते थे सब जगह उसकी धूम मच जाती थी, ये अच्छा ही है। और जिसको कोई बुरा कराना होता था उसकी ऐसी बुरी शायरी करते थे कि वो सब जगह मशहूर हो जाता था बुरा। जैसे आज मीडिया जिसको ऊपर उठाता है वो सब में बड़ी वाह वाह हो जाती है, जिसको नीचे गिराता है वो जो है ना वो उसको तो सभी बुरा भला कहने लगते हैं। तो एक होता है ना कि ट्रेंड हर जमाने में किसी चीज का होता है, तो वो शायरी के जरिए ऐसे करते थे। तो वो इतना बड़ा शायर था कि उसका कलाम काबा में लटकाया जाता था, लेकिन जब उसने सूरह कौसर सुनी तो उसने कहा मैं नहीं शायरी कर सकता, अब मैं क्विट करता हूं, इसके मैं मुकाबला कर ही नहीं सकता, ये तो किसी और का ही कलाम है, यानी इतना बड़ा शायर हो के उसने ये कहा। तो फसाहत तो बलागत में तो है ही ये, लेकिन इसके अलावा इस कुराने करीम में जो हिकमत की बातें हैं वो कहां से लेकर आओगे? सिर्फ ये नहीं कि दो चार चीजें जोड़ के बस अल्फाज बनाए, हिकमत जो इसमें पोशीदा है वो तो उसका मुकाबला कौन करेगा इन हिकमतों का, इन नसीहतों का। फिर देखें इस इनमें जिस तरह से कवानीन दिए गए हैं जिनमें इंसानों के लिए दुनिया का फायदा है, चाहे वो इकोनॉमिक से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो कोई सोसाइटी के कोई कवानीन है, चाहे रहने सहने से कोई मुतल्लिक है, माज से हैं, या कोई भी माशरती अहकाम हैं, वो सब के सब दुनियावी लिहाज से भी जो उनके फवायदे हैं नफे हैं वो कोई ला ही नहीं सकता। ऐसा सिस्टम, ऐसी इकामात, ऐसी बातें जिनसे एक ऐसा निजाम कायम हो जाए जो दुनिया में भी कामयाबी तक पहुंचा दे। आप देखें जब सहाबा कराम इस कुरान को लेकर चले, उन्होंने वाकई इसको फॉलो किया, तो 3 कॉन्टिनेंट्स तक उनकी हुकूमत पहुंच गई थी, 3 कॉन्टिनेंट्स तक दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे वो, ऐसी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं। तो इसमें दुनिया की कामयाबी का भी नुस्खा है, और जो आखरत की बातें ये बताता है वो कहां से कोई लेकर आएगा? वो जो गैब की बातें हैं वो गैब की बातें कहां से कोई इंसान ला सकता है? ठीक है, जिनका जिनका तो किसी को नहीं पता। इसी तरह जो ये प्रिडिक्ट करता है कुरान कि ऐसा हो जाएगा और फिर वैसा ही हो जाता है, उसको कौन ला सकता है? ठीक है ना, अब कुरान ने कहा मसलन कि रोम फतह, रोमी फतेह होंगे, उस वक्त उसका कोई इम्कान नहीं था, लेकिन कुरान कह रहा है तो वही हुआ जिसका कोई सोच ही नहीं सकता था। कुरान ने कहा कि ये मोमिन एक दिन ये कामयाबी पाएंगे, और दुनिया ने देखा उन्हें कामयाबी पाई। कुरान ने जिस जिस तरह कहा वो कोई सोच ही नहीं सकता था ये सब कुछ भी हो सकता है। इसी तरह पिछली उम्मतों की जो खबरें हैं, जो तारीख के हालात हैं, नूह अलैहिस्सलाम के, आद के हैं, समूद के हैं, कौम शुएब के हैं, ये उलमाए यहूदो नसारा भी नहीं जानते थे जो इतने माहिर समझे जाते थे, उनकी भी नहीं मालूमात थी वो जो जो बातें कुरान ने बताई। तो ये तो ना नबी अलैहिस्सलाम अपने नॉलेज से बता सकते थे, उनको कहाँ से पता था, उनको भी नहीं पता था ना, ये सिस्टम वो खुद दे सकते थे, वरना वो हिरा में जाके क्यों बैठते थे कि अल्लाह ये लोगों की हालत ऐसी हो गई कि कैसे कैसे ये सब ठीक होगा, क्यों इनके लिए तड़पते थे, उस वक्त ही ठीक कर देते। तो ये सब चीजें तो कुरान ने आके दी ना, और इसको माना, काफरों ने भी माना कि हाँ वाकई इस जैसा कोई कलाम नहीं है, उस जमाने में भी माना था, जभी तो अबू जहल, अबू सुफियान ये लोग रात को छुप के जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनने के लिए, सुबह को सब लोगों के यानी आपस में मिल गए। ये वाकया आता है वाकई में भी है कि ये अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक, ये अपने घरों से निकले, रात को छुप के जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुन रहे थे, आप पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, तो सुनते रहे। जब रात गुजर गई, सुबह हुई, तो सब वहां से वापस जाने लगे, तो रास्ते में मिल गए और एक दूसरे को पता चल गया, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे कि कितनी बुरी हरकत की, आइंदा नहीं ये करनी हमने। अगले दिन क्या हुआ, हर एक ने सोचा कि दूसरा तो नहीं आएगा, चलो मैं जाता हूँ, जाके सुन के आता हूँ, क्योंकि इसकी इतनी तासीर थी, ये तासीर कैसे कोई पैदा कर सकता है अल्फाज में, और हमें क्यों नहीं पता चलती फिर, क्योंकि हम बिल्कुल डम है ना, हमें तो समझ ही नहीं आती, और ना हमें जुबान का पता है, ना हमें माने का पता है इसके, न जुबान की भी हमें फसाहत नहीं पता कि ये वर्ड किस तरह से ऐसे होता है, ये कैसे यूज होता है। उनको तो समझ आती थी, और सिर्फ समझ नहीं आती थी, वो इस लैंग्वेज के माहिर थे, इसलिए वो लैंग्वेज को भी अप्रिशिएट कर सकते थे। तो छुप के सुनने लगे जाके, जब फिर सुबह हुई तो फिर एक दूसरे को देख लिया, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहा, उन्होंने कहा अगर किसी और को पता चल गया ये तो सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने तीसरे दिन, तीसरी रात भी ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने वादा किया कि हम मौहदा करते हैं कि हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो फिर वो अपने अपने घर चले गए। फिर सुबह को अखनस बिन शुरैक ने अपनी लाठी उठाई, अबू सुफियान के पास पहले गया, जाके पूछा बताओ इस कलाम के बारे में फिर तुम्हारी क्या राय है। उसने दबे दबे लफ्जों में कहा कि हाँ वाकई कुरान के ये हक कलाम है, ये इंसान का नहीं है। फिर उसने जाके अबू जहल से पूछा तुम बताओ, उसने साफ कह दिया हमारे खानदान में और अब्दे मनाफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है उसमें हमेशा से एक ना मतलब राइवलरी सी रही है, एक यानी मुकाबलेबाजी होती है ना जैसे शरीकों में, इस तरह एक मुकाबलेबाजी रही है, वो कुछ करते थे हम वही कर देते थे। अब क्या है, अब उन्होंने कह दिया कि हमारे अंदर एक नबी पैदा हो गया, आसमान से वही आती है, अब जाहिर है इसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, तो अब हम जितना मर्जी जोर लगा दें हम नहीं, कैसे इस ताकत नहीं रख सकते कि इसका मुकाबला करें, तो अब हम क्या करें फिर, हम हरगिज इसके ऊपर ईमान तो लाना ही नहीं हमने, वरना तो मतलब हमारी कितनी नाक कटेगी। तो उसके अंदर वो चीज थी, ऐसा नहीं था कि उनको समझ नहीं आई है, ऐसा नहीं था कि वो उनको कोई शक है इस कलाम में, वो कहते तो थे, बातें तो इसी तरह की बनाते थे, इसीलिए कुरान ने चैलेंज दे दिया ना और उनको लाजवाब कर दिया। लेकिन ये बात नहीं है कि उनको कोई वाकई उनके दिल के अंदर इस कुरान के मुकाबले में कोई बात थी, या कोई शक था कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उनका सिर्फ अपना ये तासुब था, ये कि हमारे खानदान से नहीं है, ये कि ये कैसे बन गए, ये चीजें थी जो यहूद के लिए भी मुश्किल थी डाइजेस्ट करनी, हजम करनी, और इसी तरह मुशरिकीन मक्का में भी ऐसे लोग थे अबू जहल जैसे। तो एक बात नहीं है कुरान की कि जिसके अंदर आपको ये छुपी बातों की इतला देना, गैब की बातें बताना, फिर इसी तरह अब फ्यूचर की बातें बताना, पास्ट की बातें बताना, फिर इसी तरह ऐसी ऐसी फसाहत और बलागत जो कि उस वक्त का कोई इंसान नहीं मुकाबला कर सका। और आप देखें जो लोग इतनी मुखालफत में बढ़ जाएं, वरना वो कैसे हो सकता था कि वो इसके मुकाबले में ना आते, कैसे हो सकता था कि इस चैलेंज को इतनी दफा सुन के वो उठ के खड़े ना होते और कहते हम भी लेकर आते हैं कोई। एक्चुअली ले तो आते, वो कोई ना कोई चीज बना ही लेते, कौन सी बनानी मुश्किल थी, लेकिन उनको पता था कि पूरा अरब कैसे जानता है इस सारी लैंग्वेज को और कितने माहिर है, जब उनके सामने कुरान रखा जाएगा और हमारी शायरी रखी जाएगी या हमारा जो भी कलाम रखा जाएगा तो सब ने हमें लान तान करनी है और हमारी रुसवाई होगी कि ये क्या उठा के ले आए, ये क्या बना लिया तुमने। जैसे कि जिसने नबुवत का दावा किया था, आपको पता है मुसलमा कजाब जो था, उसके सामने हजरत अमर बिन आस उस वक्त खैर मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमा कजाब से मिले तो मुसलमा ने पूछा कि तुम मक्के से आ रहे हो, बताओ तो आजकल वहां पे कोई ताजा वही नाजिल हुई है। उन्होंने कहा हाँ, अभी एक छोटी सी सूरत नाजिल हुई है लेकिन बड़ी फसीह है, बड़ी बलीग है, बड़ी जामे है, और वो कौन सी सूरत है, सूरतुल आसर। उसने कहा, थोड़ी देर सोच के उसने कहा तो क्या हुआ, मैं भी एक सूरत बना, मुझे भी एक सूरत आती है, मैं भी, मेरे ऊपर भी एक सूरत नाजिल हो गई है। उसने कहा अच्छा फिर तुम सुनाओ। उसने ऐसी सूरत सुनाई, क्या थी वो, क्या ए जंगली चूहे, ए जंगली चूहे तेरा वजूद सिवाय दो कानों के और सीने के और कुछ भी नहीं है, बाकी सरासर तू बिल्कुल नाचीज है। फिर फखरिया कहने लगा बताओ तो सही कैसा है, तुम्हें मेरा कलाम कैसा है। उसने कहा मुझे क्या पूछते हो, तुम्हें तो खुद पता है तुम झूठे हो। कहाँ ये फजूल कलाम तुम्हारा और कहाँ वो हिकमतों से भरा कलाम। यानी इस कुरान की तो एक एक सूरा भी, जो छोटी से छोटी सूरत भी, बल्कि इनको तो कहा गया एक आयत भी बना के ले आओ, तो वो नहीं कर सके थे मुकाबला। वरना आपका क्या ख्याल है, उन्होंने बैठना था आराम से? तो ये आप सोचते होंगे ना ये बात भी कि फिर वो क्यों नहीं लेकर आए, ये वजह थी कि फिर ऐसी चीज का मुकाबला भी कैसे करें ना। आप आज भी देखें, जिनको कुछ नहीं समझ आती ना, वो भी जब सूरह रहमान सुनते हैं, सूरह वाकया सुनते हैं, सूरह यासीन सुनते हैं, तो उनका एक जो सोज उनके अंदर और जिस तरह से उनका रिदम है, जैसे वो चलता है ना, तो वाकई दिल के ऊपर असर होता है, जिसको कुछ ना समझ आए। इसी तरह उन्होंने एक जगह कोई दो लोग खड़े किए और उन्होंने कहा, एक सिर्फ अरबी में वैसे ही बोल रहा था और दूसरी तरफ कोई कुरान पढ़ने लगा, तो जो गैर मुस्लिम सुनने वाले थे जिनको अरबी का कुछ भी नहीं पता, वो भी कहने लगे नहीं ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं दो, ये वो चीज नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने हदीस पढ़ी है, कभी आप देखें हदीस पढ़ के, तो आप देखेंगे हदीस बिल्कुल डिफरेंट है कुरान से, उसके अल्फाज की जो वोकैबुलरी है वो डिफरेंट है, उसकी जो जो जिस तरह से उसका स्टाइल है वो डिफरेंट है। देखा हर एक कलाम का एक स्टाइल होता है ना, मैं बोलूँ एक स्टाइल है, कोई और को आप सुनेंगे एक और स्टाइल से बोलेगा, तीसरे को आप सुनेंगे कोई, हर एक का स्टाइल है, बात चाहे वही बात कही गई, लेकिन स्टाइल मुख्तलिफ होता है कि नहीं। इसी तरह जो कुरान का स्टाइल है ना, वो हदीस का स्टाइल नहीं है, सुभान अल्लाह। तो एक फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट था, डॉक्टर मॉर्डिस, उसने कुरान की कोई 62 सूरतों का तर्जुमा फ्रेंच जुबान में करने का बेड़ा उठाया था। तो उसने ये मानी बात, उसने कहा बेशक कुरान का जो तर्ज जुबान है ये खालिक का तर्ज जुबान है, बेशक जिन हकायक को और जिन चीजों पर ये कलाम, ये जैसे यानी ये हावी है, जैसे ये हावी है ना, ये कलामे इलाही हो सकता है, ये किसी और का कलाम नहीं हो सकता। तो इसमें शक को शुबा करने वाले भी जब इसकी तासीर को देखते हैं तो वो भी इतराफ पे मजबूर हो जाते हैं। और उसने कहा कि 50 करोड़ मुसलमान, उस वक्त तो 50 करोड़ का था, अब तो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, लेकिन उसने कहा 50 करोड़ मुसलमान जो इस जमीन के हर हिस्से पे फैले हुए हैं, इनमें कुरान की खास तासीर को देख के जो ये मिशनरीज है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज, इनमें काम करने वाले इसका इतराफ करते हैं कि एक वाकया भी ऐसा नहीं पेश आया कि जिस मुसलमान ने इस्लाम और कुरान को समझ लिया वो कभी मुर्तद हुआ या वो कभी कुरान का मुनकिर हुआ। ये जो मुर्तद होते हैं ना, वो वही लोग सिर्फ होते हैं जिन्होंने कुरान को नहीं समझा, सिर्फ वो होते हैं, बाकी जिसने कुरान को समझ लिया वो कभी मुर्तद हो ही नहीं सकता और वो कभी कुरान का मुनकर नहीं हो सकता। ये उसने कहा जो गैर मुस्लिम था। तो वो क्योंकि मिशनरीज जाते थे ना काम करने के लिए, आज भी जाते हैं, तो वो उनके काम कहाँ पे ज्यादा होते हैं, वो किधर वर्क करते हैं ज्यादा, यहाँ पे ऐसे लोग होते बेचारे जिनको नहीं समझ होती ना दीन इस्लाम की ना किसी चीज की, उनके ऊपर काम करते हैं। तो जहां पे समझ आ जाए ना कुरान की, फिर इंसान टस से मस नहीं होता। फइल्लम तफालू, फिर अगर तुम ना कर सको, अगर तुम ये लेकर अपने साथ दुनिया जहान को मिला लो, सारे इंसान मिल जाए, सारे जिन मिल जाए, तुम ये अगर ना कर सको, वलन तफालू, और अल्लाह ताला ने वर्डिक्ट भी दे दिया तुम कर ही नहीं सकोगे। ठीक है, ये भी एक पेशीन गोई है ना फ्यूचर की, जो मैंने आपको कहा कि कुरान में वो पेशीन गोइयां हैं जो सच साबित हुई हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स इवन वो वाले हैं, साइंस की बातें, सूरज चांद की, आसमानों की, वो बातें जो आज साइंस डिस्कवर कर रही है, और साइंस हैरान है, एम्ब्रियोलॉजी की जो बातें हैं, ये उस वक्त तो जमाने के अंदर लोग नहीं जाके देख सकते थे कि ये पेट में, माँ के पेट में बच्चा तो किन स्टेजेस से गुजरता है, जो कुरान ने बताई और इनके डॉक्टर साइंटिस्ट मान गए कि ये, वो हैरान हो गए ये कैसे कुरान में, अब इस तरह की बातें कहां से कोई लेकर आए, बनाओ तो सही कोई ऐसी चीज। तो ये तो इल्म, हिकमत, लैंग्वेज के तौर पे, यानी यू नेम इट, हर चीज में सबसे टॉप पे अल्लाह ताला ने फरमाया लन तफालू, कभी कर ही नहीं सकते, हरगिज नहीं कर सकते। और वाकई 1400 साल गुजर गए हैं, आज तक कोई नहीं कर सका और ना कर सकेगा कि ऐसा कलाम लेकर आए। देख लो हम फिर इस कलाम को छोड़ के किधर खाक छानते फिरते हैं। ये नहीं कि आप कोई और इल्म ना ले, ये नहीं मैं कह रही, उलूम ले, लेकिन जो टॉप का इल्म था उसको आज क्या हाल किया हुआ। आज हम ऐसे नहीं इसकी नाकदरी करते, कहते तो जुबान से तो बहुत कहते, हाँ वाकई इस कलाम जैसा तो कोई कलाम ही नहीं, लेकिन फिर हमारी जिंदगियों में क्या है, इसको समझने के लिए कोई एफर्ट नहीं है, इसको सीखने के लिए कोई कोशिश नहीं है। अभी उतनी जगह पे हमें कोई कह दे कि भाई आप ये कोर्स कर लें, इससे आपको $10,000 की जॉब राइट अवे मिल जाएगी, तो देखना हम उल्टे सीधे ना होके करें, चाहे सर नीचे तो पैर ऊपर करने पड़े तब भी करेंगे, है ना। लेकिन ये जो इतना कीमती कलाम है जिसका कयामत तक के लिए चैलेंज दे दिया गया, कोई लेकर आए तो सही, ऐसा वो उसको हम कुछ भी नहीं जानते। देखिए कदर जो है ना जुबान से बोलने से नहीं होती, कदर दिल में होती है। जुबान से बोलने से तो कोई किसी को कुछ भी कह दे और उसके दिल के अंदर उसकी कोई उसकी वैल्यू ही ना रखे तो क्या आप उसको कहेंगे। तो हमारे अमल से पता चलता है कि हमें कितनी कदरदानी है इसकी, हमने तो कदर ही नहीं पहचानी कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी चीज दे दी। वो तो कितनी कोशिशें करते रहे जो जुबान दान थे, वो तो कितनी उनको कोशिश क्या करनी थी, उनको पता था कि हम नहीं कर सकते इसका मुकाबला, उनके तो दिल जान गए थे ना, लिहाजा उन्होंने कोई सर नहीं जोड़े, कोई मीटिंग्स नहीं की कि आओ आओ अब लोगों, जैसे फिरौन ने जादूगर इकट्ठे कर लिए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मोजे का मुकाबला करने के लिए, तो इन्होंने नहीं कोई ऐलान किए कि आ जाएं सारे अरब से सारे शायर आ जाएं हम मुकाबला करने लगे हैं। दे न्यू इट, वरना उन्होंने बैठना नहीं था चैन से, उनके दिल जानते थे। तो आज आपके पास दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सिस्टम है, तरह तरह के क्या क्या चीजें गूगल से निकल जाती हैं, क्या हर चीज की आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आज बना लो कोई इसके जैसा कलाम। ये तो खुला चैलेंज है हमेशा तक के लिए, बना लो, कोई नहीं बना सकता। इसलिए किसी ने सवाल किया था मेरे से एक दफा, कोई गैर मुस्लिम लोग थे, उन्होंने उनको कहा कि आप हमें ये साबित करें कि ये अल्लाह का कलाम है, ये आप हमें साबित करें, क्योंकि आपके कहने से थोड़ी हमने मान लेना। तो देखें ये सबूत है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। जो मैंने जितनी आपको इसके मौजों की बातें बताई, ये सब आप नोट कर लें, इनको बताएं, क्योंकि ये सबसे पहला वो क्वेश्चन ही ये करते हैं। तो अगर तुम नहीं, हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, और अगर तुम ला भी नहीं सकते और इसको मानना भी नहीं है तुमने, तो फिर क्या है, फत्तकुन्नार लती वकूदुहन्नासु वल हिजारा, तो डरो फिर उस आग से, बचो उस आग से, अल्लती वकूदुहन्नासु, जिसका ईंधन क्या है, इंसान और पत्थर है, वैद्दत लिल काफिरीन, फिर इनकार करने वाले जो ना, यहाँ पे काफिर एक से नहीं है, जो भी इनकार करे इस कुरान का, जो भी इसमें शक करे, वो सब काफिर है, ठीक है। चाहे कोई कहे मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं लेकिन मुझे इस कुरान में शक है, वो भी काफिरों में ही आ जाता है, इसमें शक नहीं कर सकते, ये अल्लाह ही का कलाम है। और जितनी बड़ी हस्ती होती है उतनी ही उसके कलाम की भी वैल्यू होती है। अब मैं कोई बात बोलूं उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन कोई सदर, कोई वजीर, कोई वो बात बोले तो उसकी सारी दुनिया के अंदर वो उसके प्रचार होंगे। क्यों? इसलिए कि जितना बड़ा किसी का ओहदा है, जितना बड़ा किसी का स्टेटस है, उस मुताबिक ही होगा। कोई राह चलता कोई बात बोल दे, उसको कोई पूछेगा भी नहीं। तो अल्लाह ताला रब्बे कायनात का ये कलाम है, मामूली बात नहीं है, इसकी कदर पहचाने, ऐसा कोई कलाम हो ही नहीं सकता। ये सोच के इसको सीखें और समझें कि मैं पढ़ क्या रही हूं, ये तो पहले सोचूं, मैं सीखने क्या जा रही हूं, सोचे तो सही, इसकी अजमत को पहले जहन में लेकर आए, जिसका चैलेंज खुला है पूरी इंसानियत गया, जिन जितनी मिन दूने ला में कौन कौन आ जाता है, सिर्फ इंसान नहीं है, मिन दूने ला अल्लाह के सिवा किसी को भी ले आओ, किसी को पकड़ के ले आओ, जाओ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई, देखिए कौन ऐसा दावा भी कर सकता है, कितनी किताबें लोग लिखते हैं, आज तक कोई किताब इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकी, और आज तक कोई किताब लिखने वाला ये नहीं लिख सका कि मेरी किताब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जाओ जितने मर्जी जमा हो जाओ, इस जैसी कोई किताब ही नहीं ला सकता। नहीं, हमेशा कोई लिखता है फिर उससे बेहतर कोई और लिख देता है, फिर उससे बेहतर कोई और आ जाती है, हर एक सोचता है मेरा वर्क सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके बाद कोई और आ जाता है। देखिए तो इस कलाम जैसा कलाम कोई ला नहीं सका और ना ला सकता है, और अगर फिर भी नहीं तुम बाज आते तो आखिरी दो टोक बात कर दी गई, जो हुज्जत तमाम कर दी गई कि फिर बचो उस आग से, लेकिन जैसे एक धमकी दी जाती है ना, फिर डर जाओ कि देखो एक आग है फिर तैयार, ऐसे काफरों के लिए। और उस आग का ईंधन क्या है? इंसान है और पत्थर है, यानी जब इंसान डाले जाएंगे ना इस आग के अंदर, तो वो आग और भड़केगी और पत्थर डाले जाएंगे। यानी क्या फ्यूल है इसका? इसका फ्यूल लकड़ियां नहीं है, इंसान और पत्थर। सोचे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो क्या जब फ्यूल खत्म हो जाता है फिर तो आग बुझ जाती है, तो क्या इसका फ्यूल खत्म हो जाए? नहीं, खत्म नहीं होगा, इसलिए कि वो इंसान जल जल के फिर दोबारा उनकी स्किन आएगी, फिर उनको तो मौत आनी नहीं है उसके अंदर, वो तो जिंदा ही है, फिर दोबारा स्किन आ जाएगी, फिर जलेंगे फिर से, तो वो तो ईंधन दोबारा रिफ्यूलिंग होती जा रही है उसकी। ना सोचें, जिसका फ्यूल इंसान हो तो फिर वो इंसानों को कैसे कैसे वो जलेगी इसके साथ, यानी इंसानों के अपने ऊपर भी आग लगी हुई है। और पत्थर है, और पत्थर इटसेल्फ वो एक फ्यूल भी है और इनके लिए भी एक वो है, क्योंकि ये पत्थर उलमा कहते हैं गंधक के बने हुए, यानी सल्फर के हैं, और बाज कहते हैं ये उनके बुत भी होंगे मुशरिक की, इनके जिनकी वो पूजा करते थे उनको डाल दिया जाएगा ताकि उनकी हसरत बढ़े कि ये देखो इनको हम पूजा करते थे, ये यहां पड़े हुए। वबशिर लदीना आमनु वामिलु सालिहात, और खुशखबरी दे दे। किसको कहा जा रहा है खुशखबरी देने? ए नबी, आप खुशखबरी सुना दें। नहीं, अपने नबी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप बशारत दें, खुशखबरी दें, गुड न्यूज। आप दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज तो सुनते हैं, लेकिन कुरान आपको गुड न्यूज देता है। और वो गुड न्यूज क्या है? अल्लदीन आमनु आमिलु सालिहात के लिए, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और साले अमल उन्होंने किए, यानी ईमान ला के अल्लाह पर, फरिश्तों पर, कुरान पर, अल्लाह की सारी किताबों पर, कयामत पर, तकदीर पर, इन जो सारी ईमानियात है, ईमान लाए और साले अमल भी किए। ईमान का फल होता है नेक अमल। ईमान जब इंसान ले आता है ना, तो खुद ब खुद नेक अमल होते हैं। प्रॉब्लम ईमान में होता है, जिस वक्त नेकियां नहीं हो रही, वजह क्या है? ईमान में प्रॉब्लम है, ये रूट कॉज होता है। उनके लिए क्या है? अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, के बेशक उनके लिए बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये कैसे बागात होंगे? ये देखें, आज भी इंसानों के लिए जहां पे उनको कोई बहुत लग्जरी कोई रेजिडेंस होती है, तो उसके साथ उनको क्या मिलता है? कोई लेक होती है, कोई व्यू ऐसा होता है पानी का, कोई फवारे लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज, पानी से कोई ब्यूटी क्रिएट की जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको पता है कि इंसान को किस चीज से राहत मिलती है, तो वहां पे भी नहरें बहती होंगी। और हदीस में आता है, आपको पता है, वो नहरें हैं लेकिन गड़े नहीं है अंदर जमीन में। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह को बेहतर पता है कि वो नहरें कैसी होंगी जिनके वो बगैर गड़ों के लिए। जैसे हम दुनिया में तो नहरें कैसी देती, एक गड़ा सा होता है उसके अंदर नहर बह रही होगी, होती है ना, तो ये ऐसी नहीं है। और हदीस में आता है नहरे कौसर के बारे में, दोनों किनारे मोतियों के, और उसकी मट्टी मुश्क की, और उसके जो पत्थर होंगे वो लूलू होंगे और जवाहर होंगे। तो ऐसे तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हु। और फिर कुल्लमा रुज़िकु, जब कभी उनको रिस्क दिया जाएगा, मिन्हा इनसे, इनसे किन से, इन बागात में, मिन समरातिन कोई भी फल, रिस्कन बतौरे रिस्क के, कालू बतौरे रिस्क के, यानी इसका मतलब एतमाम से उनको दिया जाएगा। जब भी रिस्क दिए जाएंगे, एक तो इससे ये पता चलता है कि उनको उठ उठ के जाके अपना खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही खाना रखना पड़ेगा टेबल पे, ना फिर बर्तन उठाने पड़ेंगे, ना फिर उनको धोना पड़ेगा। रिस्क दिए जाएंगे मीन्स दे विल बी सर्व्ड, इसका मतलब सर्व करने के लिए कोई होंगे जो उनको उनकी सर्विस में लगे होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी ग्रोसरियां करने की और खाने पकाने की। ठीक है, कालू वो कहेंगे, हाद अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो हमने पहले भी खाया हुआ। यानी पहले कब? एक माना इसका ये है दुनिया में, यानी दुनिया में भी हमने खाया है। मिसाल के तौर पे कोई खाना आपके सामने आता है, मसलन है कोई केस, सेब है, अनार है, तो आप उसको कैसे रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ओ ये तो मैंने पहले भी खाया हुआ था? तो वो वहां पे कहेंगे ये हमने दुनिया में भी खाया था, इससे पहले भी खाया हुआ। वह उतू भी ही मुतशाबिया, हालांकि तो वो दिए जाएंगे इससे मिलते जुलते, हालांकि वो नहीं होगा, वो तो इससे मिलता जुलता होगा, तो ऐसा क्यों किया जाएगा? मिलते जुलते वहां पे क्यों चीजें होंगी? मसलन है कि वहां पे आपको, आपको यहाँ पे कोई खाना बड़ा पसंद है, मसलन बिरयानी है, आपको वहां पे बिरयानी दी जा रही, तो कोई और चीज क्यों नहीं दी जाती? मुतशाबे क्यों दी जाएगी वहां पे? इसलिए कि इंसान की जो तबीयत होती है ना, वो जिस चीज को आप खाते रहे हो उसी की तरफ रगबत करती है। मसलन जो आपके खाने हैं, जो आपका देसी फूड है, अब लोग जब उसको दूसरे कहते हैं तो कहते हैं हाय स्पाइसेस, स्पाइसी है, हाय इनके खानों की स्मेल है, हमें वो बड़े अच्छे लगते हैं। किसी आप गोरे को ले आओ तो वो तो उसको उल्टा लगता है, उसको वो रगबत नहीं होती जो हमें अपनी चीजों, मतलब मिठाई है, अब मिठाई का जो हमें शौक होगा वो किसी और को नहीं हो सकता, वो कोई अरब को आप ले आएंगे, कोई और किसी दुनिया के बंदे को, कोई अफ्रीकी को ले आएंगे, उसको नहीं पसंद होगी। इसी तरह हमें उनकी नहीं पसंद, आपको कोई चाइनीज की कोई डिश ऐसी हो, कोई अफ्रीकन की कोई डिश ऐसी हो, कोई और लोगों की, तो अब थोड़े दिन बाद आप कहते हैं हमें तो अपनी दाल चावल ही याद आ रहा। क्यों? इसलिए कि आप उससे यूज टू होते हैं, वो आपकी एक तबीयत के अंदर ये चीजें होती हैं जो आपने हमेशा से खाई होती है, उन्हीं की रगबत होती है, उन्हीं का टेस्ट डिवेलप हुआ होता है। तो ये मिलते जुलते इसीलिए होंगे, वरना वहां पे कोई ऐसी चीज देखे ये तो एक एलियन सी चीज है। अब दूसरा आपको कहे कि भाई नहीं खाएं, आप खा के तो देखें बहुत अच्छी है, नहीं नहीं दिल नहीं कर रहा, नहीं, क्योंकि आपको उससे फेमिलियर नहीं है आपकी तबीयत। तो अल्लाह ताला वहां पे मिलती जुलती समारात देंगे। और ये हदीस में भी आता है कि हाँ, दूसरी आपको भी एक बात बतानी थी, पहले वो बता दूं फिर उसके बाद ये, कि उनको इससे पहले भी जन्नत में वो चीज मिली होगी, मिन कबल से क्या, मैंने बताया ना, एक मुराद है दुनिया में और एक मुराद है कि जन्नत में ही उनको इससे पहले भी वैसी शक्लो सूरत और वैसी चीज कोई मिली होगी, तो अब दोबारा जब मिलेगी तो कहेंगे ये तो हमने पहले भी खाई भी है। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये मरवी है कि जन्नतियों का ये कॉल के पहले भी हमको ये मेवे दिए गए, इससे मुराद दुनिया में भी ये मेवे हमें मिले थे। और दूसरे सहाबा ने कहा कि इससे मुराद ये भी हो सकता है कि वहीं पे जन्नत में मिले। इब्ने कसीर कहते हैं एक प्याला आएगा खाएंगे, फिर दूसरा आएगा तो कहेंगे ये तो अभी खाया है हमने, फरिश्ते कहेंगे आप खाएं, अगरचे सूरत में शक्ल में वैसा ही है मगर मजा और है। ठीक है, तो छोटे छोटे गुलाम होंगे जो इधर उधर ट्रेज लेके घूम रहे होंगे और पेश कर रहे होंगे और ये खाते जाएंगे। वलहुम फीहा अजवाज मुतहरतुन, और उनके लिए पाक जोड़े होंगे। एक तो मुराद बीवियां हैं, यानी वो बीवियां उनको मिलेंगी जो फिजिकली भी हर किस्म की गलाजत से पाक होंगी, जैसे पीरियड्स नहीं होंगे उनको, कोई पेशाब पखाना थूक कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो गंदगी की हो सकती है, नापाकी की या हो सकती है, बल्कि पाक होंगी। और दूसरी पाकी कौन सी होगी? दिल भी पाक होंगे, दिलों में कोई कीने नहीं, कोई बुग्ज नहीं, उससे बुरा इससे करा वो चीजें कुछ नहीं होंगी, तो हर तरह से पाकीजा होंगी। यानी आप देखे ना कि वहां की बीवियां भी या वहां के जोड़े भी ऐसे होंगे जो एक दूसरे के लिए प्योर होंगे, फिजिकली भी, रूहानी तौर पे भी, स्पिरिचुअली भी। यानी ये भी उसके अंदर बात आती है कि पर्सनैलिटी भी ऐसी होगी जिसमें पाकीजगी हो, जैसे बिल्कुल जैसे कि दूसरे को पसंद होगा वो वैसी ही होंगी और कभी पुरानी नहीं होंगी। देखिए ना, दुनिया में तो क्या होता है, शुरू शादी में बड़ा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और बड़ा वो होता है, जब जूं 4-5 साल गुजर जाते हैं लहजे बदलने लगते हैं, हाँ वो प्यार मोहब्बत के बोल और वो मीठे बोल खत्म होने लगते हैं, फिर 8-10 साल जब गुजरते हैं तो फिर और कड़वाहट आने लगती है, 15-20 साल गुजर जाए तो फिर तो ऐसे होता है कि बस खाने को दौड़ते हैं एक दूसरे को, औरत कहती है बस बाहर ही रहे सारा दिन मेरा हस्बैंड, और आदमी कहता है घर ही ना जाओ। मगर जैसे वहां पे फल है ना, तो जब भी खाएंगे नया जायका आएगा, नई लज्जत होगी। इसी तरह आपस में मियां बीवी की भी मोहब्बत ऐसी होगी कि जब भी मिलेंगे लज्जत ही लज्जत होगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा जैसे पहला दिन शादी का होता है, जैसे उसकी एक्साइटमेंट होती है, जैसे उसका मजा होता है, वो फिर बाद में नहीं रहता, लेकिन जन्नत में हमेशा ऐसा रहेगा, उसकी कंपनी का मजा हमेशा वही रहेगा। तो इसी तरह एक और भी इसका माना लिया गया है, अजवाज से। अच्छा एक ये बात कि औरतें कहती हैं हमें क्या मिलेगा, ये क्या होगा। देखिए एक तो यहाँ पे प्लुरल की बात आ रही है ना, उनके लिए लहुम, उनके लिए बीवियां होंगी या उनके लिए जोड़े होंगे, तो प्लुरल में तो जब प्लुरल की बात है तो प्लुरल ही अजवाज आएंगी ना। यहाँ पे ये नहीं बात हो रही कितने जोड़े होंगे, कितनी बीवियां होंगी, एक से ज्यादा के, एक के, दो के, चार, ये नहीं बात हो रही। जब कहा जैसे मैं कहूँ आप सबके लिए पेंसिल्स होंगी, तो पेंसिल्स कह रही ना, आप सब हैं तो आप सबके लिए पेंसिल्स होंगी, एक पेंसिल तो नहीं कहूंगी। इसी तरह लहुम फीहा अजवाज, उन सब के लिए अजवाज होगी, यानी इसका मतलब ये भी है सबको जोड़ा मिलेगा। कोई दुनिया के अंदर बगैर जोड़े के भी था तो वहां पे उसको जोड़ा मिलेगा, और वो भी पाक जोड़ा। और फिर एक और माना भी कि अजवाज से मतलब अपने हम ख्याल लोग, अपने हम मिजाज लोग भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह वाकिया में फरमाया ना, वकुन तुम अजवाजन सलाता, तुम तीन ग्रोहों में होंगे, तीन ग्रुप्स के अंदर होंगे। तो अजवाज वो जो हम मिजाज लोग हैं, जिनकी कंपनी में आप रहते हैं तो मजा आता है, जो हम ख्याल होते हैं, जिनके साथ मिलके खुशी होती है, तो वहां पे ये भी होंगे, ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो लोग दुनिया में इस बात को हमेशा जरा फील करते हैं कि दुनिया में आजकल कोई वाकई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई मुखलिस दोस्त नहीं है, और किसी ने कभी कोई दोस्त अच्छा बना भी लिया हो तो कभी उससे कोई तकलीफ पहुंच जाती है, कभी हर्ट होते हैं आप, कभी उसके ऊपर कोई बात उसकी बुरी लग जाती है आपको, लेकिन वहां पर दोस्त भी इतने पाकीजा मिलेंगे कि जिनके साथ कंपनी में मजा आएगा, जो दगा देने वाले नहीं होंगे, जो तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं होंगे, जो लेग पुलिंग करने वाले नहीं होंगे, इतने प्यारे कंपनी मिलेगी। वहम फीहा खालिदून, और सबसे मजे की बात ये कि हमेशा रहने वाले हैं उसके अंदर, यानी कभी ये मजा खत्म नहीं होगा। आप देखें दुनिया में हमारा दिल चाहता है आए ऐसा कोई वक्त आ जाए, काम ना हो, बस हम कहीं सैर पे चले जाएं, वहां पे जाके मजा करें, लेकिन सैरें भी नाकिस हैं, और फिर जो वहां पे स्टे होता है वो भी थोड़े दिन का, बहुत भी अच्छा कोई हम वेकेशन प्लान कर लें, थोड़े दिन बाद वापस आना होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को हमेशा की कोई वेकेशन मिल जाए, हमेशा के कोई मजे आ रहे हैं, हमेशा की कोई पार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम फीहा खालिदून, इन इन ग्रुप्स के साथ, इन दोस्तों के साथ हमेशा मजा करेंगे, सैरो तफरी है, गपशप है, खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पकाना नहीं, कुछ उठाना नहीं है, कुछ रखना नहीं है, और सब चीजें ऐसी हैं कि जिनके मजे बढ़ते ही जाती हैं, हर दफा खाओ तो अलग अलग मजे आते हैं, और हर दफा मजा और ज्यादा होता है। ये चीजें हैं वहां पे, और हमेशा की जिंदगी है, कभी जो खत्म ना होने वाली। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहद अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने इन आयत की।
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون